पिछले अध्याय में आपने देखा कि रुद्र ने रूही को डांटा, धमकाया और उसे गोद में उठा लिया और उसे बाथरूम में ले जाकर बाथटब में फेंक दिया। देवांश दिशा को फंसाने की योजना बनाता है और रुद्र रूही को नहाने के बाद कपड़े पहनाता है, जिससे रूही डर जाती है। इस अध्याय में रूही कपड़े पहनती है और रुद्र से गुस्सा होती है, क्योंकि उसने उसे कमरे में बंद कर दिया था। रुद्र रूही को बताता है कि वो उसकी है और उसे उसकी मर्जी के बिना कहीं नहीं जाना चाहिए। रुद्र रूही के करीब आता है और रूही उसकी मस्कुलर बॉडी को देखकर आकर्षित हो जाती है। रुद्र रूही को छूने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। डिनर आता है और रुद्र कुछ ऐसा करता है जिससे रूही खुश हो जाती है, लेकिन फिर गुस्सा भी हो जाती है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 76। अब आगे। रुद्र खाने को टेबल पर रखते हुए रूही से बोला, रू आओ खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना। रुद्र की बात सुनकर रूही खुश हो जाती है, क्योंकि उसे सच में काफी तेज भूख लगा था। रुद्र के बोलते ही वे खाना खाने के लिए जैसे ही सोफे पर बैठने वाली होती है, वैसे ही रुद्र रूही का हाथ पकड़ उसे अपने गोद में बैठाते हुए बोला, रू चलो मुझे जल्दी से खाना खिलाओ, मुझे भूख लगी है। रुद्र की बात सुनकर और उसकी हरकत को देखकर रूही गुस्से में बोली, क्यों, भगवान ने तुम्हारे पास हाथ नहीं दिए हैं जो मैं तुम्हें खिलाऊं? वैसे भी मेरी उंगली में जिस तरह से तुमने काटा है, उसकी वजह से मुझे काफी दर्द हो रहा है। मैं खुद तो सही से खा नहीं पा रही, तुम्हें कैसे खिलाऊं? इतना बोल वे खुद को रुद्र से छुड़ाने लगती है, जिसे देख रुद्र बोला, रू अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मुझे जल्दी खिलाओ, मुझे कोई भी बहाना नहीं चाहिए, वरना पूरी रात इसी तरह मेरी गोद में बैठी रहो। रुद्र की बात सुनकर रूही को ना चाहते हुए भी रुद्र को खिलाना पड़ता है, क्योंकि वे समझ चुकी थीं कि ये इंसान काफी ज्यादा जिद्दी है। वही रूही जो खिलाता देख रुद्र मुस्कुराते हुए खाने लगता है और फिर अपने हाथों से रूही को खिलाने लगता है। रूही भी जल्दी से बिना कुछ बोले रुद्र के हाथों से खा लेती है, क्योंकि एक तो उसे काफी ज्यादा भूख लगी थी, ऊपर से रुद्र का यूं बिना कपड़ों से अपने करीब महसूस करना, जिसके उसे काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए वे जल्दी से खाना खत्म कर रुद्र के गोद से उतर जाती है और बेड पर जा अपने आप को चादर से पूरी तरह कवर कर सो जाती है, क्योंकि वो अब रुद्र से कोई भी बहस नहीं करना चाहती थी। वहीं रुद्र भी रूही को कुछ भी नहीं बोलता और उसी तरह स्टडी रूम में जा अपना काम करने लगता है, क्योंकि उसका काफी सारा काम पेंडिंग था। अगली सुबह रूही की नींद 7 बजे खुलती है। वे उठकर बैठ जाती है तो देखती है कि वे कमरे में अकेली है, जिसे देख वे चैन की सांस लेती है और जल्दी जल्दी उठकर फ्रेश होकर जीन्स टॉप पहन लेती है, क्योंकि उसे कॉलेज भी जाना था। थोड़ी देर में वे पूरी तरह रेडी एक कॉलेज गर्ल की तरह तैयार हो जाती है और दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं, वैसे ही रुद्र जिम से वर्कआउट कर दरवाजा खोल अंदर आ जाता है, जिस वजह से रुद्र जाकर सीधा रूही से टकरा जाता है। रूही अभी गिरती तभी रुद्र उसे अपनी मजबूत बाहों में उसे संभाल लेता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रूही पर पड़ती है वे रूही को देख देखता ही रह जाता है, क्योंकि वे लग ही काफी प्यारी रही थी। उसके खुले बाल, कानों में छोटे छोटे इयररिंग, आंखों में हल्का सा काजल और होठों पर पिंक लिपस्टिक, इतने में ही वे भला की खूबसूरत लग रही थी। वहीं रुद्र रुद्र को खुद को पकड़ता हुआ देखती है तो उसे देख चिरकर बोली, छोड़ो मुझे, मुझे कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है। रुद्र की बात सुनकर रुद्र होश में आता है और रूही को छोड़ देता है, जिसे देख रूही रुद्र के साइड से निकलने लगती है, पर वो जा पाती कि रुद्र दोबारा रूही का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचते हुए बोला, रू तुमने क्या कहा कि तुम कॉलेज जाओगी, पर तुम्हें कॉलेज क्यों जाना है? रुद्र की बात सुनकर रूही हैरानी भरी नजरों से उसे देखने लगती है, जैसे कहना चाहती हो कि लोग कॉलेज क्यों ही जाते हैं, पढ़ने के लिए ही ना। वहीं रुद्र रूही के बातों को समझ अपनी कड़क आवाज में रूही से कहता है, रू तुम्हें जितना पढ़ना था तुमने पढ़ लिया, अब तुम्हें और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी पढ़ने के बाद लोग जॉब करते हैं ताकि पैसे कमा सके, लेकिन तुम्हें पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पति इतना अमीर है कि वे तुम्हारे लिए कुछ भी खरीद कर ला सकता है। रुद्र की बात सुनकर रूही गुस्से में बोली, छोड़ो मुझे, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कॉलेज जाना है तो जाना है। इतना बोल वे रुद्र को धक्का दे नीचे भाग जाती है, जिसे देख रुद्र गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कस लेता है और जाकर फ्रेश हो वो भी नीचे चला जाता है। वहीं रूही नीचे जाती है तो सीधा परी से टकरा जाती है। वहीं परी जब रूही को देखती है तो परेशान होते हुए कहती है, रूही तुझे क्या हुआ? परी ने इतना बोला ही था कि रूही परी के गले लग जोर जोर से रोने लगती है, जिसे देख परी बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि आखिर रूही को हुआ क्या है। उसे कहीं ना कहीं पूरा यकीन था कि रूही की इस हालत के पीछे उसके शैतान भाई का हाथ है। परी रूही को शांत करा ही रही थी कि बाकी घर वाले भी वहां आ जाते हैं और रूही को इस तरह रोता हुआ देखकर सब हैरान थे कि आखिर सुबह सुबह हो क्या गया कि घर की बहू इस तरह रो रही है। कोई भी रूही के पास जा भी कुछ भी कहता या पूछता तभी वहां रुद्र भी आ जाता है और रूही को इस तरह रोता हुआ देखकर वे अपनी रौबदार आवाज में बोला, रू रोना बंद करो और मेरे पास आओ। रुद्र की आवाज सुनकर रूही और ज्यादा रोने लगती है और परी को छोड़ वे रणविजय जी के पास जाते हुए बोली,
दादाजी आपकी बात यहाँ पर सब सुनते हैं ना, तो आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे इसके साथ नहीं रहना। ये इंसान हर वक्त मुझे डराता रहता है और मुझे सजा देता रहता है। ये मुझे अब कॉलेज भी नहीं जाने दे रहा, और आपको पता है इसने कल मेरी उंगली पर काटा। इतना बोल वे अपनी उंगली रणविजय जी को दिखाने लगती है, जिसे देख रणविजय जी अपनी नजरें इधर उधर कर लेते हैं। रूही अपनी नादानी में सबके सामने क्या क्या बोल गई उसे खुद भी नहीं पता था। रणविजय जी के साथ साथ बाकी सब भी अपनी नजरें इधर उधर करने लगते हैं, मगर परी और अर्जुन आंखें भाड़े रूही की उंगली को देख रहे थे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका शैतान भाई इस तरह की भी हरकत कर सकता है। वहीं देवांश ये सब देख मनी मन डेविल स्माइल करते हुए बोला, भाई तो काफी फास्ट निकले, रूही को एक ही झटके में अपना बना लिया और उसके साथ ये सब हरकतें भी कर ली। बस मैं ही अपनी गुड गर्ल के हाँ का इंतजार कर रहा हूँ, बस एक बार मेरी गुड गर्ल भी मान जाए तो मैं भी उसे तुरंत अपना बना लूंगा। इतना बोल वे मन ही मन मुस्कुराने लगता है। वहीं रुद्र जब रूही की हरकतों को देखता है तो वे अपने लंबे कदमों से रूही के पास जा उसे अपने करीब खींचते हुए बोला,
रूह तुम कमरे में चलो, फिर तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या क्या करता हूँ और क्या कर सकता हूँ।